नंदिनी इप्सिता की घबराहट उसकी आवाज में ही महसूस कर रही थी और उसने इप्सिता को समझाते हुए कहा, नहीं, किसी को कुछ भी नहीं होगा, तुम अपने आप को संभालो और जीजू को भी, वो ठीक रहेंगे बिल्कुल। इप्सिता को इतना समझाने के बाद नंदिनी ने अपने मन में कहा, अभिमन्यु इस टाइम इप्सिता के साथ लिफ्ट में कैसे हो सकते हैं। नंदिनी ने जब उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो इप्सिता ने कहा, हेलो नंदिनी, तुम्हें हमारी आवाज आ रही है ना। नंदिनी ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने सुन ली है तुम्हारी बात और लिफ्ट के बाहर ही खड़ी हूँ, तुम थोड़ा सा वेट करो। इतना बोलकर नंदिनी ने फोन नहीं काटा और वो सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखते हुए बोली, क्या करें आप लोग, जल्दी से लिफ्ट खोलिए, आपको पता है ना इप्सिता अंदर है, अगर उसे कुछ हो गया तो। इप्सिता फोन पर नंदिनी की घबराई हुई आवाज सुन रही थी। तभी उसने अभिमन्यु का ध्यान भटकाने के लिए उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अभिमन्यु नंदिनी आ गई है, बस थोड़ी ही देर में लिफ्ट खुल जाएगी, आप प्लीज हमारी तरफ देखिए। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स हुआ। तभी लिफ्ट को बाहर से खोलने वाले सारे इलेक्ट्रिशियन वहां पर पहुंच गए। इप्सिता ने देखा कि लिफ्ट थोड़ी थोड़ी खुल रही थी और बाहर से आई हुई रोशनी थोड़ी हल्की सी उसे लिफ्ट के अंदर आई। उसने अभिमन्यु को उठाने की कोशिश करते हुए कहा, उठिए अभिमन्यु, देखिए लिफ्ट खुल रही है, आप देख रहे हैं ना। नंदिनी ने जब उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो इप्सिता ने कहा, हेलो नंदिनी, तुम्हें हमारी आवाज आ रही है ना। नंदिनी ने कहा, मैंने सुन लिया है, मैं लिफ्ट के बाहर ही खड़ी हूँ, तुम थोड़ा सा वेट करो। इतना बोलकर नंदिनी ने फोन नहीं काटा और वो सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से लिफ्ट खोलिए, आपको पता है ना इप्सिता अंदर है, अगर उसे कुछ हो गया तो। इप्सिता फोन पर नंदिनी की घबराई हुई आवाज सुन रही थी। तभी उसने अभिमन्यु का ध्यान भटकाने के लिए उसकी गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अभिमन्यु नंदिनी आ गई है, बस थोड़ी ही देर में लिफ्ट खुल जाएगी, आप प्लीज हमारी तरफ देखिए। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स हुआ। तभी लिफ्ट को बाहर से खोलने वाले सारे इलेक्ट्रिशियन वहां पर पहुंच गए। इप्सिता ने देखा कि लिफ्ट थोड़ी थोड़ी खुल रही थी। उसने अभिमन्यु को उठाने की कोशिश करते हुए कहा, उठिए अभिमन्यु, देखिए लिफ्ट खुल रही है, आप देख रहे हैं ना। नंदिनी ने जब उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो इप्सिता ने कहा, हेलो नंदिनी, तुम्हें हमारी आवाज आ रही है ना। नंदिनी ने कहा, मैंने सुन लिया है, मैं लिफ्ट के बाहर ही खड़ी हूँ, तुम थोड़ा सा वेट करो। इतना बोलकर नंदिनी ने फोन नहीं काटा और वो सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से लिफ्ट खोलिए, आपको पता है ना इप्सिता अंदर है, अगर उसे कुछ हो गया तो। इप्सिता फोन पर नंदिनी की घबराई हुई आवाज सुन रही थी। तभी उसने अभिमन्यु का ध्यान भटकाने के लिए उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अभिमन्यु नंदिनी आ गई है, बस थोड़ी ही देर में लिफ्ट खुल जाएगी, आप प्लीज हमारी तरफ देखिए। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स हुआ। तभी लिफ्ट को बाहर से खोलने वाले सारे इलेक्ट्रिशियन वहां पर पहुंच गए। इप्सिता ने देखा कि लिफ्ट थोड़ी थोड़ी खुल रही थी। उसने अभिमन्यु को उठाने की कोशिश करते हुए कहा, उठिए अभिमन्यु, देखिए लिफ्ट खुल रही है, आप देख रहे हैं ना। अभिमन्यु ने इप्सिता की बात सुनी और उसने लिफ्ट की तरफ देखा। वहां बाहर काफी सारी आवाज आ रही थी। इलेक्ट्रिशियन और सिक्योरिटी गार्ड चिल्ला रहे थे और एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। वहीं इप्सिता के कान में नंदिनी और ध्रुव की आवाज गई। नंदिनी और ध्रुव दोनों ही लिफ्ट के बाहर खड़े थे। तभी ध्रुव तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, क्या कर रहे हैं आप लोग, जल्दी करिए, खोलिए जल्दी से। लिफ्ट को खोलने वाले इलेक्ट्रिशियन ने कहा, सर हम ट्राई कर रहे हैं, प्लीज आप एक मिनट के लिए शांत रहिए तो हम थोड़ा जल्दी काम कर लेंगे। नंदिनी ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो अपना काम कर रहे हैं ध्रुव, तुम प्लीज दो मिनट शांत रहो। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा। वो पसीने से भीग चुका था और उसकी आंखें ऑलमोस्ट बंद होने वाली थीं कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और नंदिनी जल्दी से लिफ्ट के अंदर आई। उसने देखा अभिमन्यु इप्सिता की गोद में था और काफी बुरी हालत में था। इप्सिता ने चिल्लाते हुए कहा, प्लीज कोई डॉक्टर को कॉल करो। इप्सिता ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए ये बात कही तो तभी ध्रुव अंदर आया। उसने अभिमन्यु को उठाने में हेल्प की। नंदिनी ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और उसे लिफ्ट से बाहर लेकर आई। उसने इप्सिता के कंधे और उसके हाथ को छूते हुए कहा, तुम ठीक हो ना ईशु। इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, हम तो ठीक हैं, लेकिन अभिमन्यु उनकी हालत ठीक नहीं है, हमें लग रहा है शायद काफी ज्यादा घबरा गए हैं। नंदिनी ने उसे शांत करते हुए कहा, बस तुम शांत रहो, कुछ नहीं होगा उन्हें, और वैसे भी डॉक्टर बुला लिए गए हैं, अभी उनका चेकअप हो जाएगा। ध्रुव अभिमन्यु को लेकर सीधे वेटिंग रूम के अंदर चला गया और तुरंत ही वहां पर डॉक्टर आए और वो अभिमन्यु का चेकअप करने लगे। इप्सिता वहीं वेटिंग रूम के दरवाजे के पास खड़ी थी। नंदिनी उसे अभिमन्यु के लिए इतना ज्यादा कंसर्न होते देखकर अपने मन में बोली, हो ना हो इप्सिता के मन में अभी भी अभिमन्यु के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है, और जिस तरह से उनके लिए इतनी ज्यादा परेशान हो रही है उससे तो इतना समझ में आ रहा है कि वो उनकी अभी भी कितनी ज्यादा फिक्र करती है। नंदिनी सारी बातें सोच रही थी कि तभी ध्रुव उसके पास आकर बोला, यही अभिमन्यु है ना, यही इप्सिता को शादी के मंडप में छोड़कर भाग गया था, तो फिर ये अब वापस क्यों आया है। नंदिनी ने ध्रुव की ये बात सुनकर अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, अभी तो फिलहाल मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, और इप्सिता भी काफी ज्यादा परेशान लग रही है, घर जाकर इप्सिता से मैं पूछूंगी। ध्रुव ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें घर जाकर भी उससे ज्यादा चीज नहीं पूछनी चाहिए। थोड़ा टाइम दो उसे, क्योंकि इप्सिता काफी ज्यादा घबराई हुई है। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और एक एक करके वहाँ से सभी लोग चले गए। ध्रुव भी वहाँ से जा ही रहा था। तभी ध्रुव ने कहा, तुम भी अपने एरिया में जाओ नंदिनी, वरना अगर बॉस ने देख लिया तो बेकार में ही बातें सुनने को मिलेगी तुम्हें। नंदिनी ने जैसे ही ध्रुव ये बात सुनो तो उसने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रहे हो तुम, और वैसे मुझे नहीं लगता इप्सिता अभिमन्यु को यहाँ पर छोड़कर जाएगी। इतना बोलकर नंदिनी ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, और वैसे भी थोड़ी ही देर बची है, मैं जल्दी से अपना काम खत्म करती हूँ, फिर इप्सिता को लेकर वापस घर चली जाऊंगी। इतना बोलकर नंदिनी वहाँ से चली गई और डॉक्टर अभिमन्यु का चेकअप करके वेटिंग रूम से बाहर निकल रहे थे। तभी इप्सिता उनके पास आकर बोली, डॉक्टर अभिमन्यु ठीक है ना? डॉक्टर ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ही इज टोटली फाइन, एक्चुअली सफोकेशन की वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, इसी वजह से वो बेहोश हो गए, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। इप्सिता ये बात सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स हुई और उसने गहरी सांस ली। डॉक्टर के जाते ही इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु पानी की तरफ देख रहा था। वो उठकर पानी लेने जा ही रहा था कि इप्सिता वेटिंग रूम के अंदर आई और उसने पानी का ग्लास उठाकर अभिमन्यु की तरफ बढ़ाया। अभिमन्यु ने अपना सिर उठाकर इप्सिता के चेहरे की तरफ देखा और उसके हाथ से पानी का ग्लास लिया और एक घूंट पानी पीकर उसने वही टेबल पर रख दिया। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखकर अपने हाथ बांध लिया और उसे ऑलमोस्ट डांटते हुए कहा, जब आपको अंधेरे से डर लगता है और लिफ्ट यूज नहीं करते हैं तो फिर आप लिफ्ट के अंदर आए क्यों? अभिमन्यु इप्सिता की ये बात सुनकर धीमी आवाज में बोला, हम लिफ्ट कभी यूज नहीं करते हैं, वो तो हमें आपसे बात करनी थी, बस इसी वजह से अंदर आए। इप्सिता ने अभिमन्यु को घूर कर देखते हुए कहा, आपका हमसे बात करना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डर को भी भूल गए। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ देख रहा था। वो लड़खड़ाते हुए उठकर खड़ा हुआ और उसने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप नहीं जानती हमारे लिए आपसे बात करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, और हमको सही टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि हम आपको सब कुछ बता सकें। आपके मन में जो गलतफहमी है हम उसे दूर करना चाहते हैं। एक्चुअली उस दिन जब हम मंडप में नहीं आए तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था कि आपकी जान को खतरा था, और अगर हम आपसे शादी कर लेते तो। इतना बोलते बोलते अभिमन्यु काफी ज्यादा हांफने लगा और वो अपने सिर को पकड़कर वहीं पर बैठ गया। इप्सिता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, शांत रहिए, अभी आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, अभी प्लीज आप बस थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ जाइए, आपकी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन हमारा आपसे बात करना अभी बहुत जरूरी है। अभिमन्यु अभी ये बोल ही रहा था तभी उसे चक्कर आने लगा।
इप्सिता ने अभिमन्यु को वहीं सोफे पर लेटाते हुए कहा, लेट जाइए आप पहले, कुछ देर के लिए शांत रहे, और रही बात आपसे बात करने की तो बात आप फिर किसी और दिन कर लीजिएगा। इतना बोलकर इप्सिता ने अभिमन्यु को लिटाया। इप्सिता देख रही थी कि अभिमन्यु का सिर काफी भारी था, उसकी पलकें खुली नहीं रही थी और थोड़ी ही देर में उसकी आंखें बंद हो गईं। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली और वो उसे वही वेटिंग रूम में छोड़कर वहां से बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में पल्लवी काफी ज्यादा परेशान थी और उसके हाथ में उसका फोन था। वो बार बार नरेंद्र को फोन कर रही थी। नरेंद्र ने पल्लवी का फोन उठाया और उसे डांटते हुए कहा, क्या बात है पल्लवी, आप हमें बार बार फोन करके परेशान क्यों कर रही हैं? हमने आपसे कहा था ना, हम आज बहुत ज्यादा बिजी हैं, हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र की बात बीच में काटते हुए पल्लवी ने कहा, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है, आप समझ नहीं रहे, प्लीज हमारी बात सुनिए। नरेंद्र ने पल्लवी को डांटते हुए कहा, जो भी बात है हमें घर पर बताना, अभी फोन रखें। इतना बोलकर नरेंद्र ने कॉल कट कर दिया। टू बी कंटिन्यूड। कैसा लगा आप लोगों को आज का एपिसोड बताइए कमेंट में। और जैसा कि नंदिनी ने कहा, इप्सिता के मन में सच में अभिमन्यु के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि इतनी नाराजगी के बाद भी उसे अभिमन्यु की इतनी फिक्र थी, शायद खुद से भी ज्यादा वो उसकी फिक्र कर रही थी। और उसे ऐसी हालत में देखकर जिस तरह से वो खुद घबरा गई थी, क्या लगता है आप लोगों को, क्या वो प्यार करती है हमारे अभिमन्यु से या फिर सिर्फ उसकी फिक्र करती है? लेकिन क्यों,